मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लौदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानवीय जड़ों की चर्चा करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि हमारे पास तकनीकियों को सीमित करने और उसे दिशा देने की स्वतंत्रता है। हम इसे दूसरी तरह की सेवा में उपयोग कर सकते हैं जो अपने में अधिक उचित मानवीय और सामाजिक समग्र हैं। श्रोताओं, हम एक सच्चाई यह भी पाते हैं कि लोग अपने में अच्छे भविष्य पर भी विश्वास नहीं करते हैं। वे एक बेहतर भविष्य के संबंध में आंखें बंद कर विश्वास नहीं करते हैं जो वर्तमान स्थिति और हमारी तकनीकी योग्यताओं में आधारित है। हम इस चेतना को लोगों में पाते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास अपने में मानवता और इतिहास के विकास के बराबर नहीं हो सकते हैं। यह विचार कि एक बेहतर भविष्य की संभावना कहीं और बनी हुई है, यह तकनीकी संभावना की निरंतरता को खारिज करना नहीं है जिसे हम सदैव अपने जीवन में पाते हैं, लेकिन मानवता में एक वृहद परिवर्तन हुआ है और नवीनता का निरंतर संचय हमें एक छिछलेपन की ओर खींचता है जो एक ही दिशा है। यह हमारे लिए कठिन हो जाता कि हम रुककर जीवन की गहराई का पता लगाएं। यदि संरचनाएं युग की आत्मा को परिलक्षित करती हैं, हमारे विस्तृत विशाल निर्माण और निरस अपार्टमेंट ब्लॉक वैश्वीकृत प्रौद्योगिकी की भावना को व्यक्त करते हैं जहां हम नई चीजों के अस्तित्व में आते एक बाढ़ को पाते हैं जो उबाव थकान भरा होता है। आइए हम इसके सामने अपने को हार मानना अस्वीकार करें और निरंतर हर चीज के अर्थ और उद्देश्य पर अपने को आश्चर्यचकित होने दें। ऐसा नहीं होता तो हम वर्तमान स्थिति को वैध घोषित करते हुए बचने के नए रूपों की खोज करेंगे जो हमें खालीपन से बचने को मदद करता हो। श्रोताओं, ये सारी चीजें हमें इस आवश्यकता की ओर इंगित कराती हैं कि हमें साहसपूर्ण तरीके से सांस्कृतिक क्रांति में आगे बढ़ना है। विज्ञान और तकनीकी तटस्थ नहीं है। शुरू से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक बहुत सारी योजनाएं और संभावनाएं अपने में बनी हुई हैं, जो विभिन्न रूपों में निश्चित स्वरूप ले सकती हैं। कोई हमें पाषाण युग की ओर लौटने को सुझाव नहीं देता है, लेकिन हमें धीरे चलते हुए सच्चाई को एक अलग रूप में देखने की जरूरत है जिससे हम एक सकारात्मक और टिकाऊ प्रगति को देख सकें, उसका उपयोग कर सकें और साथ ही उन मूल्यों और महान लक्ष्यों को पुनः प्राप्त कर सकें जो भव्यता के कारण हमारी अनियंत्रित भ्रम से बाहर हो गए हैं। श्रोताओं, आधुनिक मानव केंद्रवाद ने विरोधाभासी रूप से वास्तविकता पर तकनीकी विचार को महत्व देना समाप्त कर दिया है क्योंकि तकनीकी दिमाग प्रकृति को संवेदनहीन स्वरूप, तथ्यों के भंडार स्वरूप, सिर्फ उपयोग किए जाने हेतु दिए गए एक वस्तु की भांति एक कच्चा माल जिसे ठोक कर आकार देते हुए उपयोगी चीज बनाए जा सके, यह उसे पृथ्वी में मात्र एक स्थल के रूप में देखती है जिसमें चीजों को पूरी तरह से बिना विचारे फेंका जा सकता है। इस भांति हम विश्व सम्मान के संग तोल मोल की स्थिति को पाते हैं जब मानव इस दुनिया में अपने लिए एक उचित स्थान पाने को असफल रहता है तो वह अपने को गलत समझता और इस तरह अपने विरुद्ध कार्य करने लगता है। ईश्वर ने मनुष्य को केवल पृथ्वी प्रदान नहीं की है जिसे सम्मान के संग अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करे, बल्कि वह स्वयं मानव के लिए ईश्वर का दिया गया एक उपहार है। इसलिए उसे चाहिए कि वह प्रकृति और नैतिक स्वरूपों का सम्मान करे जो उसे विरासत में दी गई है। आधुनिकता को अत्यधिक मानव केंद्रितवाद द्वारा चिन्हित किया गया है, जो आज भी एक अन्य आड़ में साझे रूप में समझा और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के किसी भी प्रयास के रास्ते में खड़ा है। हमारे लिए समय यह आ गया है कि हम एक नए रूप में सच्चाई और इसकी सीमाओं की ओर ध्यान दें। बदले में यह हमें व्यक्तियों और समाज को एक अधिक और फलदायी रूप में समझने को मदद करता है। एक अपर्याप्त ख्रिस्तीय मानव विज्ञान की प्रस्तुति हमारे लिए मानव और दुनिया के बीच के गलत संबंध को प्रस्तुत करती है। बहुधा जो हमें सौंपा गया है वह दुनिया पर प्रभुत्व का प्रोमेथियन दृष्टिकोण है, जो हमें इस बात की अनुभूति प्रदान करती है कि प्रकृति की सुरक्षा केवल उन लोगों के जिम्मे में है जो अपने में कमजोर हृदय वाले हैं। इसके बदले दुनिया में हमारे प्रभुत्व के अर्थ को और अधिक उत्तरदायी रूप में समझने की जरूरत है। श्रोताओं, प्रकृति को होने वाले नुकसान और हमारे निर्णयों के पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी करने की उपेक्षा करना प्रकृति की संरचनाओं में निहित संदेश की उपेक्षा का सबसे बड़ा संकेत है। जब हम एक गरीब, एक मानव भ्रूण, शारीरिक रूप में एक असक्षम व्यक्ति को इस सच्चाई के अंग स्वरूप स्वीकारने में असफल होते हैं तो हमारे लिए प्रकृति की रुदन को सुनना कठिन हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें अपने में जुड़ी हुई हैं। एक बार जब मानव अपने को सच्चाई से स्वतंत्र घोषित करता और अपने में पूर्ण अधिकार के साथ जीवन यापन करने लगता है तो जीवन का संपूर्ण ढांचा अपने में ढहने लगता है, क्योंकि अपने को ईश्वर की सृष्टि में सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने के बदले मानव स्वयं अपने को ईश्वर के स्थान में स्थापित करता और इस प्रकार अंततः प्रकृति की ओर से विरोध भड़क उठता है। श्रोताओं, इस प्रकार की स्थिति ने हमेशा ही एक प्रकार के मानसिक विकार की ओर हमें अग्रसर किया है, जिसमें एक तकनीकी तंत्र जो छोटे प्रणालियों में कोई आंतरिक मूल्य नहीं देखता है, जो दूसरों के संग एक चरम सह अस्तित्व में है, तो वह मनुष्यों में कोई विशेष मूल्य नहीं देखता है, लेकिन कोई इंसानियत से दूर नहीं रह सकता है। हमारे लिए प्रकृति के संग नवीनता का कोई संबंध नहीं होगा यदि हम मानव के संग अपनी नवीनता में जीवन यापन नहीं करते हों। हमारे लिए पर्याप्त मानव विज्ञान के बिना कोई पारिस्थितिकी नहीं हो सकती है। जब किसी एक मानव को एक साधारण प्राणी के रूप में देखा जाता है, उसे संयोग या भौतिक नियतिवाद का उत्पादक माना जाता है, तो हमारी उत्तरदायित्व के मनोभाव अपने में खत्म हो जाते हैं। एक गलत मानव केंद्रितवाद आवश्यक रूप से जैविक केंद्रितवाद की ओर झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अन्य संतुलन को जन्म देगा जहां हम पुराने समस्या का समाधान में असफल होते हुए एक नई समस्या को अपने में संग्रहित करेंगे। मनुष्य से दुनिया के प्रति जिम्मेदारी महसूस करने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि ज्ञान, इच्छा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की उनकी अद्वितीय क्षमताओं को मान्यता और महत्व नहीं दिया जाता हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी प्रभु तेरी स्तुति हो पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोडूंगा, मैं कभी छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम अपार दिया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि ईश्वर दिल से निकलने वाली प्रार्थना पसंद करते हैं। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर कहा, यीशु ने बुराई पर विजय पाई है, उन्होंने अपने पौत्र क्रूस को पुनरुत्थान का सेतु बना दिया है। हम प्रतिदिन उनकी स्तुति एवं प्रशंसा करने के लिए अपना हाथ उठाएं, उन्हें अपने दिल की उम्मीद एवं गूढ़ रहस्य बतलाएं। ईश्वर इस तरह के जीवित ठोस और दिल से निकलने वाली प्रार्थनाओं को पसंद करते हैं। सिनोडल कलीसिया में महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान देने के साथ सिनोडल पद्धति को व्यवहार में लाने के लिए दुनिया भर से लगभग 1400 लोगों की ऑनलाइन मुलाकात की उम्मीद है। इस साल अक्टूबर में रोम में होने वाली धर्म सभा के दूसरे सत्र की तैयारी के लिए 23 अप्रैल को दुनिया भर से लगभग 1400 लोग ऑनलाइन इकट्ठा हो रहे हैं। 15 अप्रैल के एक प्रेस विज्ञप्ति में विश्व कैथोलिक महिला संगठन संघ ने लिखा है कि ऑनलाइन कार्यक्रम आत्मा में वार्तालाप को विश्व महिला पर्यवेक्षक एवं इग्नासियस मुलाकात प्रेरिताय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। यह 2021 में शुरू की गई धर्म सभा प्रक्रिया में पूरी कलीसिया के साथ मिलकर चलने का एक प्रदर्शन है। बयान में कहा गया है कि जूम के माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिनोडल पद्धति को व्यवहार में लाना और मिशन में सिनोडल कलीसिया में महिलाओं की भागीदारी को गहराई से समझना है। आत्मा में बातचीत को विभिन्न समूहों और विभिन्न भाषाओं में संचालित किया जाएगा ताकि सभी प्रतिभागी अपने विचार साझा कर सकें और अन्यों के अनुभवों एवं दृष्टिकोणों को सुन सकें। बयान में घोषणा की गई है कि 5 महाद्वीपों से 300 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आत्मा में बातचीत स्थापित पद्धति के अनुसार हो छोटे समूहों को संचालित करेंगे। बयान यह घोषणा करते हुए समाप्त होता है कि विश्व कैथोलिक महिला संगठन संघ, जो दुनिया भर में 8 मिलियन से अधिक कैथोलिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आश्वस्त है कि ये बातचीत कैथोलिक विश्वासी समुदायों का निर्माण करने, पौत्र आत्मा को सक्रिय रूप से सुनने हेतु आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने और मौन साझा एवं सहयोगात्मक आत्मपरक में मदद करेंगे। करीब एक साल पहले सूडान में युद्ध छिड़ गया। 12 महीनों की भीषण लड़ाई और हिंसा के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए। भुखमरी ने विकराल रूप ले लिया है और मानवीय संकट की दुखद स्थिति पैदा हो गई है। 15 अप्रैल 2023 को सूडान में युद्ध छिड़ गया, जिसने अपने साथ मौत, भारी विनाश, बलात्कार, हत्या और घातक भुखमरी फैला दिया। त्रासदी का पैमाना विनाशकारी है। कम से कम 15,000 लोगों की जान चली गई, करीब 8 मिलियन लोग विस्थापित हो गए और अन्य 25 मिलियन लोग जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश में सड़कें लाशों से पट्टी हुई हैं और जैसे जैसे संकट बढ़ता और स्थिति बिगड़ता जा रहा है, लोगों की आशा के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लिए धन भी कम होता जा रहा है। अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडानी सशस्त्र बल के बीच राजधानी खार्तूम में लड़ाई शुरू हुई। लगभग 18 मिलियन सूडानी अब गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। युद्ध से पहले भी आर्थिक अस्थिरता और जातीय हिंसा के कारण सूडान में रहने की स्थिति कठोर और अन्यायपूर्ण थी। यद्यपि मानवीय आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन जरूरतमंदों तक इससे पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है और गैर सरकारी संगठनों एवं सहायता संगठनों को लूटपाट, नौकरशाही बाधाओं और संपर्क करने के लिए गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अक्सर होता है, महिलाओं, बच्चों और विस्थापित लोगों को युद्ध का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हिंसा में पैदा हुए बच्चों को कठिन भविष्य का सामना करना है, जबकि कुपोषित माताएं उन्हें खिलाने में संघर्ष कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की निरंतर उपेक्षा को देखते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने युद्धरत गुटों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सूडान में युद्ध के दुखद वर्षगांठ मनाने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए संकट को संबोधित करने के लिए विश्व नेता पेरिस में एकत्रित हो रहे हैं। व्यापक उदासीनता के बीच संघर्ष की पहली वर्षगांठ चल रही मानवीय तबाही की याद दिलाती है। पेरिस बैठक में सूडान के नागरिक समाज और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सदस्य शामिल होंगे, लेकिन न तो सूडानी सेना और न ही सीआरपीएफ के प्रतिनिधि ही उपस्थित होंगे। पोप फ्रांसिस ने कई बार सूडान की याद की है और लोगों तथा युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उनकी सबसे हालिया अपील रविवार 18 फरवरी को देवदूत प्रार्थना के बाद आई थी। उस अवसर पर पोप ने याद किया कि सूडान में संघर्ष ने गंभीर मानवीय स्थिति पैदा की है और उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर युद्धरत पक्षों से इस युद्ध को रोकने के लिए आग्रह करता हूँ, जो लोगों और देश के भविष्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्यारे सूडान के भविष्य के निर्माण के लिए शांति के रास्ते जल्द ही ढूंढे जा सकें। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया स्थित जकार्ता के कार्डिनल इग्नासो सुहारियो ने सितंबर में पोप फ्रांसिस के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे एक बड़े मुस्लिम देश में अपने छोटे कैथोलिक समुदाय के बारे बतलाया। उन्होंने धर्मों के बीच सहअस्तित्व एवं एशियाई ख्रिस्तों की गवाही पर चर्चा की। संत पापा फ्रांसिस आगामी सितंबर माह में अपनी 45वीं प्रेरित यात्रा पर एशिया एवं ओशिनिया में 4 देशों की प्रेरित यात्रा करेंगे। इस प्रेरित यात्रा में पोप फ्रांसिस सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जहां कैथोलिकों की कुल संख्या 8 मिलियन के करीब है, जो कुल आबादी का 3.1% है। पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर जाने से पहले वे 3 से 6 सितंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी में रहेंगे। जकार्ता के कार्डिनल इग्नासो सुहारियो ने वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बतलाया कि वे संत पापा के प्रेरित यात्रा से बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, लेकिन न केवल कैथोलिक समुदाय यह खबर पाकर बहुत उत्साहित है कि पोप फ्रांसिस इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं, बल्कि राज्य मस्जिद के महान इमाम इस्तिकलाल उन लोगों में से हैं जिन्होंने वैटिकन की औपचारिक घोषणा से कुछ हफ्ता पहले पोप फ्रांसिस की आगामी यात्रा की घोषणा की थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।